वो कहानियां शो धूम्रपान, मद्यपान या किसी अन्य प्रकार के व्यसन का समर्थन नहीं करता है और ना ही किसी प्रकार के अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देता है। ये शो केवल कहानियों की एक श्रृंखला है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। श्रोताओं को अपने विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट वो कहानियां। प्रस्तुत है सीजन 1 की आखिरी और 5वीं कहानी स्वयं। यह है कहानी का अंतिम और तीसरा भाग। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल। स्वयं में अब तक आपने सुना कि विवेक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर गौतम को अपनी परेशानी बता रहा था और डॉक्टर गौतम उसके पास आज तक इतना अजीब केस कभी नहीं आया था। असल में विवेक ने बताया कि एक शाम को उसे सड़क क्रॉस करते वक्त अपना ही हमशक्ल दिखाई दिया। अपने हमशक्ल से मिलकर विवेक बेचैन हो उठा। उसने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन वो उससे नहीं मिल सका। कुछ दिनों बाद उसे फिर से अपनी ही शक्ल का एक दूसरा इंसान दिखाई दिया और फिर तो जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया। डॉक्टर गौतम उसे समझा रहा था कि यह कुछ नहीं, बस उसका वहम है, लेकिन विवेक डॉक्टर को यकीन दिलाने पर तुला था। उसने डॉक्टर से कहा,
आपको पता है अब चीजें इतना बदल गई हैं कि मुझे पहले से लग जाता है कि वो मुझे दिखने वाला है। मैं उसे महसूस करने लगा हूं। हां, मैं उसे महसूस करने लगा हूं। मुझे उसके आने से पहले पता लग जाता है कि वो आने वाला है।
विवेक की बात सुनकर डॉक्टर गौतम ने कहा, ओके, तो तुम अब उसे महसूस करने लगे हो।
हां, मुझे पहले से पता लग जाता है कि वो आने वाला है। ये सब ऐसे हो रहा है जैसे कुछ होने वाला है, जैसे सबके पीछे कोई मैसेज हो, कोई मुझसे कुछ कहना चाहता हो, मुझे कुछ बताना चाहता हो।
विवेक की हालत बड़ी अजीब सी हो गई थी। इस बार डॉक्टर गौतम ने कुछ अविश्वास सा जताते हुए कहा, सो यू थिंक यू वॉन्ट टू से इट्स अ काइंड ऑफ सुपर नेचुरल एक्टिविटी, कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर गौतम को लग चुका था कि विवेक किसी गहरे वहम का शिकार है, लेकिन उसने अपनी बात कुछ इस तरह से कही कि विवेक को बुरा ना लगे, और इसी वजह से विवेक ने भी पूरे भरोसे के साथ कहा, हाँ डॉक्टर, मेरी बात पर यकीन कीजिए, कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। विवेक आगे भी कुछ कहने वाला था लेकिन बीच में ही गौतम के फोन की घंटी बज उठी, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। डॉक्टर गौतम ने फोन काटते हुए विवेक से कहा, विवेक, मुझे एक बार बताओ कि ऐसा क्यों होता है? जब भी तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे हमशक्ल से होती है उस वक्त या तो हल्का अंधेरा होता है या सामने वाला वहां से इतना दूर होता है कि तुम उसे ढंग से देख नहीं पाते, या फिर वो तुम्हारे पास से तेजी से गुजर जाता है। इस बात से विवेक लगभग चिढ़ सा गया, इसलिए उसने गौतम की बात काटते हुए कहा,
डॉक्टर आप।
लेकिन डॉक्टर गौतम ने उसकी बात काटते हुए आगे से कहा, विवेक तुम अपनी प्रॉब्लम को समझो, क्या तुमने कभी उससे बात की? विवेक, क्या तुमने कभी उससे बात की? डॉक्टर की बात सुनकर विवेक हिल सा गया था।
नहीं।
क्यों?
क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं इस सबसे इतना डर चुका हूं कि
विवेक के पास जैसे शब्द खत्म हो गए थे, लेकिन डॉक्टर गौतम ने उसकी बात पूरी की। तुम इस सबसे इतना डर चुके हो कि तुम पहले से ही मानकर चलते हो कि तुम्हारा हमशक्ल तुमसे मिलने वाला है, और फिर कोई भी शख्स जो तुम्हारी जैसी कदकाठी का हो, तुम्हारे जैसा दिखता हो, उसे तुम अंधेरे में या दूर से देखकर आधे एक सेकंड में डिसाइड कर लेते हो कि वो तुम्हारा हमशक्ल है। विवेक, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई हमशक्ल नहीं है, कोई हमशक्ल नहीं है तुम्हारा। इतने में डॉक्टर गौतम के फोन की घंटी फिर से बज उठी। गौतम ने घड़ी की तरफ देखा और फोन रिसीव करते हुए कहा,
हाँ तुम लोग तैयार हो, मैं बस पहुंच रहा हूं।
इसके बाद वो फिर से घड़ी की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगा। तभी विवेक की आवाज सुनाई दी,
कल कोशिश की थी मैंने।
डॉक्टर गौतम उसकी बात नहीं समझ सका। क्या?
मैंने कल उससे बात करने की कोशिश की थी।
विवेक की बात सुनकर गौतम ने गौर से उसकी तरफ देखा। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे विवेक कोई बात कहने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था।
मैंने कल उससे बात करने की कोशिश की थी। कल मैं रात को गांधीनगर स्टेशन पर था। मैं जैसे ही ट्रेन से उतरा, मुझे फिर से फील हुआ कि वो मुझसे मिलने वाला है। मैंने चारों तरफ देखा, चारों तरफ, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। मैं बस वहीं खड़ा खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। मैंने पक्का सोच लिया था कि आज मैं उससे बात करके रहूंगा। तभी दूसरे प्लेटफॉर्म पर मुझे कोई आता हुआ दिखाई दिया। मुझे लग गया कि ये वो ही है। मैंने हिम्मत जुटाई कि आज मैं इससे पूछ कर रहूंगा कि तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो मुझसे। मैं इंतजार कर रहा था कि वो मेरी तरफ देखेगा और उसने मेरी तरफ देखा। ये वो ही था। उसके देखते ही मैंने उसको आवाज दी,
ओए ओए।
लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आवाज सुनते ही वो भागने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि वो कहां भाग रहा है। वो प्लेटफॉर्म पर से पटरियों पर कूद गया। मैंने भी बगैर कुछ देखे पटरियों पर छलांग लगा दी। वो पटरियां क्रॉस करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। मैं उसको छोड़ने वाला नहीं था। इसके बाद भागते भागते वो ऊपर फुटओवर ब्रिज पर चढ़ गया। मैं भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था और ब्रिज पर बीच में जाकर वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मैंने पकड़ लिया उसको। मैं उससे पूछ रहा था, कौन हो तुम, क्या चाहते हो मुझसे, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो। लेकिन तभी वो मुझसे छुड़ाकर भागने लगा। हम दोनों के बीच छीना झपटी, हाथापाई हुई और पता नहीं कैसे वो ब्रिज से नीचे पटरी पर गिर गया।
डॉक्टर गौतम विवेक की यह बात सुनकर बुरी तरह से भौचक कर रह गया। व्हाट? वो ब्रिज से पटरी पर गिर गया?
हाँ, वो ब्रिज से पटरी पर गिर गया।
उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद ट्रेन आ गई।
विवेक की बात सुनकर डॉक्टर गौतम का दिमाग खराब हो गया था।
ट्रेन आ गई? व्हाट रबिश! और उसका क्या हुआ? वो बच तो...
डॉक्टर गौतम अपनी बात पूरी नहीं कर सका। घबराए हुए विवेक ने जवाब दिया,
मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। मुझे बस इतना पता है कि उसने ब्रिज से पटरियों पर छलांग लगा दी और उसके बाद ट्रेन आ गई। आगे मैं कुछ नहीं जानता।
विवेक का जवाब सुनकर डॉक्टर गौतम ने चिल्लाकर कहा,
तुम्हें यह भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गया? व्हाट रबिश!
लेकिन विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में डॉक्टर गौतम ने पूछा, तुम पुलिस के पास गए?
नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि मुझे कुछ नहीं पता मुझे।
विवेक की बात सुनकर डॉक्टर गौतम को अब गुस्सा आने लगा था। उसने अपनी जगह से खड़े होकर कहा, तुम जानते नहीं हो यह लीगल केस है, तुम पहले पुलिस के पास जाओ, इतनी देर से मेरा टाइम वेस्ट कर रहे थे। डॉक्टर गौतम के इस बिहेवियर को देखकर विवेक भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और कहने लगा,
डॉक्टर मुझे कुछ नहीं मालूम। उसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बस इतना पता है कि उस वक्त ट्रैक पर ट्रेन आ गई थी। आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। बस मुझे इतना याद है कि रात को 3 बजे
रात को 3 बजे मैं अपने घर पर था, मुझे नहीं पता कि मैं वहां से अपने घर कैसे पहुंचा। आप मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता कि वहां उसके बाद क्या हुआ।
तभी डॉक्टर गौतम का फोन फिर से बज उठा, लेकिन उसने झुंझलाते हुए फोन काटते हुए विवेक से कहा,
देखो मैं इस मामले में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, तुम पहले पुलिस के पास जाओ, ये लीगल मामला है, मैं इसमें फंसना नहीं चाहता।
यह कहता हुआ गौतम वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अपना सामान समेटने लगा। विवेक ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा,
डॉक्टर प्लीज हेल्प मी, प्लीज डॉक्टर।
विवेक की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने डॉक्टर गौतम को मजबूर कर दिया। वो उसका चेहरा देखने लगा और सोच में पड़ गया। फिर उसने अपना प्रिस्क्रिप्शन पैड निकाला और उस पर कुछ दवाएं लिखने लगा। थका हारा विवेक भी एक झटके से अपनी कुर्सी में बैठ गया। वो बड़ी बेचारगी के साथ कमरे में इधर उधर देख रहा था। वो इस वक्त काफी अकेला था, पूरी दुनिया में इतना अकेला कि कोई उसकी बात सुनने तक को तैयार नहीं था। उसकी निगाह टेबल पर रखी डॉक्टर की फैमिली फोटो पर गई। ऐसा लग रहा था जैसे एक सुखी परिवार की तस्वीर तक से उसे चिढ़न हो रही थी। तभी डॉक्टर गौतम ने पर्चा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा,
विवेक देखो जो कुछ हो गया वो हो गया, लेकिन अब इन सारी बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारा कोई हमशक्ल तुमसे नहीं मिलने वाला। अब इस फिजूल के ख्याल को अपने दिमाग में मत लाना। ये दवाएं अभी से शुरू कर दो और पुलिस के पास जाकर पूरा मामला बताओ, रिपोर्ट दर्ज कराओ और कल दोपहर में आकर मुझे बताना।
डॉक्टर गौतम को भी यकीन नहीं था कि वो इस पेशेंट को आज के बाद देख सकेगा या नहीं, इसलिए वो विवेक से निगाहें चुराते हुए वहां से जाने लगा। विवेक भी डॉक्टर का लिखा पर्चा देखते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया। लेकिन तभी उसे कुछ एहसास हुआ, एक जाना पहचाना सा एहसास, वो एहसास जो उसे अक्सर हुआ करता था, वो एहसास जिसके बाद उसका सामना होता था अपने ही हमशक्ल से। विवेक हैरत से चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उस कमरे में तो उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। एक सेकंड में ही उसकी निगाहों ने पूरे कमरे को स्कैन कर लिया था। उसे वहां कुछ भी अनयूजुअल नजर नहीं आया। फिर यह एहसास, ये फीलिंग, ओह। विवेक की निगाह टेबल पर रखी डॉक्टर की फैमिली फोटो पर गई। उसने फोटो को हाथ में ले लिया और उसे गौर से देखने लगा। लेकिन ये क्या, फोटो को देखकर विवेक का जैसे खून जम गया था। एक ही पल में उसे लगा जैसे समय थम गया है। सारी चीजें उसे स्लो मोशन में महसूस हो रही थी। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर कमरे से बाहर जाते डॉक्टर की तरफ देखा और उसे आवाज दी,
डॉक्टर।
डॉक्टर गौतम दरवाजा खोलकर लगभग बाहर निकल ही चुका था, लेकिन आवाज सुनकर उसने पलटकर विवेक की तरफ देखा। उसे देखकर विवेक लड़खड़ाकर कुर्सी में धंस गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। गहरी दहशत में डूबे विवेक पर बेहोशी छाने लगी, लेकिन बेहोश होने से पहले उसने एक आखिरी निगाह अपने हाथ में थामी उस फोटो पर डाली जिसमें डॉक्टर गौतम की जगह विवेक को खुद का चेहरा दिखाई दे रहा था। आप सुन रहे थे कहानी स्वयं का तीसरा और आखिरी भाग, पॉडकास्ट वो कहानियां पर, लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल। दोस्तों मैं आपके साथ आपका दोस्त इस पॉडकास्ट का राइटर और नरेटर दीपक मेड़तवाल। दोस्तों आपको कहानी स्वयं का अंत कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आप मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपनी राय बता सकते हैं। तो अभी वो कहानियां का सीजन 1 पूरा हो गया है, उम्मीद करता हूं कि सीजन 2 जल्द आपके सामने होगा। आप प्लीज वो कहानियां को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसका रिव्यू जरूर लिखें। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं हर एक मैसेज का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मुझे दीजिए इजाजत और इंतजार कीजिए वो कहानियां सीजन 2 का।